ये भी आप जो सुन रहे हैं योग वशिष्ठ महारामायण मूल वाल्मीकि रामायण। भरद्वाज ऋषि को वाल्मीकि जी बता रहे हैं और भगवान राम को वशिष्ठ जी बता रहे हैं। दो उत्तम वक्ता है और उत्तम श्रोता है। राम बादशाह कहते थे कि योग वशिष्ठ बार बार विचार करे तो आत्म साक्षात्कार अगर नहीं हो तो राम बादशाह सिर कटाएगा। इससे ऊंचे सद ग्रंथ में सामान्य व्यक्ति की गति नहीं होती, तो सामान्य व्यक्ति को उचित है कि वो तीर्थ करे, यज्ञ करे, दान करे, पुण्य करे, उपवास करे, ताकि उसके पुण्य बढ़ जाए, तब इस ग्रंथ के सुनने में उसका अधिकार बनेगा तो रुचि होगी। अगर अधिकार नहीं है, पुण्याई नहीं है, तो ये शास्त्र सुनने में उसको अच्छा रस नहीं आएगा। ये इतना ऊंचा है, जैसे केजी पढ़ा हो, मिडिल हाई स्कूल हो गया हो, तो कॉलेज में उसको चौंच खुपेगी। हाई स्कूल पास कर दिया हो तो कॉलेज के विषय में गति होगी। ये आध्यात्मिकता का कॉलेज है, कोई साधारण नहीं। तो यहाँ वशिष्ठ जी कहते कि राम जी, वाल्मीकि जी कहेंगे भरद्वाज जी, कि मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। पूर्व का कैसा भी कर्म हो, कैसा भी प्रारब्ध हो, अभी उसे पुरुषार्थ करके अपना भविष्य उज्जवल करना चाहिए।
ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे निर्मली से जल की मलिनता दूर हो जाती है, वैसे ही गुरु और शास्त्र के उपदेश से जब अविद्या मिट जाती है, तब भ्रमरूप आकार शांत हो जाते हैं। जो कुछ जगत के प्रपंच देख पड़ते हैं, वे सब माया मात्र हैं, उनसे कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। जैसे मृग तृष्णा का जल पिया नहीं जाता, वैसे ही जगत के पदार्थों से कोई परमार्थ सिद्ध नहीं होता, वे सब अज्ञान से भासित होते हैं। हे रामचंद्र जी, अपना वास्तव स्वरूप जो है सो ब्रह्म है, उसके प्रमाद से जीव मोह और कृपणता को प्राप्त होते हैं। जैसे लुहार की खाल वृथा श्वास लेती है, वैसे ही इनकी चेष्टा व्यर्थ है। इनकी चेष्टा और बोलना अनर्थ के निमित्त है। जैसे धनुष से जो बाण निकलता है, वह हिंसा के निमित्त है, उससे और कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता, वैसे ही अज्ञानी की चेष्टा और बोलना अनर्थ और दुख के निमित्त है, सुख के निमित्त नहीं, और उनकी संगति भी कल्याण के निमित्त नहीं है। जैसे जंगल के ठोठ वृक्ष से छाया और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, उससे कुछ फल नहीं होता, और न कुछ विश्राम के निमित्त छाया ही प्राप्त होती है, वैसे ही अज्ञानी जीव की संगति से कुछ नहीं होता, उसको दान देना व्यर्थ है। जैसे कीचड़ में कृत डालना व्यर्थ होता है, वैसे ही मूर्खों को दिया हुआ ध्यान व्यर्थ हो जाता है, उनसे बोलना भी व्यर्थ है। जैसे यज्ञ में कुत्ते को बुलाना निष्फल है, वैसे ही उनको बोलना निष्फल है। हे रामचंद्र जी, जो अज्ञानी जीव है, वे संसार में आते जाते और जन्मते मरते हैं और शरीर में आस्था करते हैं। पुत्र, दारा, बांधव, धन आदिक में ममत्व बुद्धि करते हैं, पर इस मिथ्या दृष्टि से वे दुख पाते हैं और मुक्ति कदाचित नहीं होती, क्योंकि वे अनात्म में आत्म बुद्धि का त्याग नहीं करते और ममता बुद्धि में दृढ़ रहते हैं। हे रामचंद्र जी, जब जन्म होता है तब जीव महा अग्नि से जलता हुआ निकलता है और महामूर्ख अवस्था में निकलकर दुखी होता है। वह जब यौवन अवस्था को प्राप्त होता है तब विषयों को सेवन करता है, वे भी दुख के कारण होते हैं। फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है तब शरीर अशक्त होता है और हृदय को तृष्णा जलाती है। इस प्रकार जन्म मरण की अवस्था में ये जीव भटकते रहते हैं। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 227। अग्नि बोले, राजन, ऋषिश्वर ने जब इस प्रकार उस बधिक से कहा तब उसने धनुष बाण डाल दिया और बोला, हे भगवन, जिस प्रकार मैं संसार समुद्र के पार हो जाऊं वह उपाय कृपा करके मुझसे कहिए, परंतु वह उपाय दुसाध्य न हो और न मृदु हो, अर्थात जो अल्प भी न हो और कठिन भी न हो। ऋषिश्वर बोले, हे बधिक, मन को एकाग्र करने का नाम शम है, इंद्रियों को रोकने को दम कहते हैं, वही मौन है। मन को एकाग्र करने से अंतःकरण शुद्ध होता है और अंतःकरण की शुद्धता से आत्मज्ञान उपजता है। इससे संसार भ्रम निवृत्त होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। अग्नि बोले, हे राजन, इस प्रकार जब ऋषिश्वर ने कहा तब वह बधिक उठ खड़ा हुआ और प्रणाम करके तप करने लगा। इंद्रियों को उसने संयम में रखा और जो अनिच्छित यथाशास्त्र प्राप्त होता उसका भोजन करने लगा। हृदय से सब क्रियाओं की मौन वृत्ति धारण की। जब उसको कुछ काल तप करते व्यतीत हुआ तब उसका अंतःकरण शुद्ध हुआ। वह ऋषिश्वर के निकट आ प्रणाम करके बैठ गया और बोला, हे भगवन, बाहर जो दृश्य है वह हृदय में किस प्रकार प्रवेश करता है और स्वप्न में अनंतर की सृष्टि बाह्य रूप हो कैसे दिखती है, यह कृपा करके आप कहो। ऋषिश्वर बोले, हे बधिक, तूने यह बड़ा गूढ़ प्रश्न किया है। यही प्रश्न मैंने श्री गणपति से किया था और उनके कहने से मैंने जो जाना है सो तुम सुनो। एक समय यही संदेह दूर करने का उपाय मैंने भी किया था। पद्मासन बांध बाहर की इंद्रियों को रोक मन में लगाया और मन बुद्धि आदि को पुर्यष्टका में स्थित किया, फिर पुर्यष्टका को भी शरीर से विरक्त किया और उसे आकाश में निराधार ठहराया। निदान जब विलक्षण होना चाहता तब विलक्षण हो जाता और जब शरीर में व्यापा चाहूं तब व्याप जाता। हे बधिक, इस प्रकार जब मैं योग धारणा से पूर्ण हुआ तो एक समय मैंने देखा कि एक पुरुष मेरी कुटी के पास सो रहा था और उसकी श्वास भीतर बाहर आती जाती थी। उसको देखकर मैंने यह इच्छा की कि इसके भीतर जाकर कौतुक देखूं कि क्या अवस्था होती है। ऐसे विचार कर मैंने पद्मासन बांधा और योग की धारणा करके उसके श्वास मार्ग से भीतर प्रवेश किया। जैसे ऊंट ऊँघता हो और उसके श्वास मार्ग से भीतर सर्प प्रवेश करे वैसे ही मैंने प्रवेश किया। उसके भीतर अपने अपने रस को ग्रहण करने वाली नाड़ियां मुझे देख पड़ी। कई वीर्य को ग्रहण करने वाली है, कई रक्त और कफ को ग्रहण करती है, कई मलमूत्र वाली है। अनेक विकार जो उसके भीतर थे सो सब देखे। इससे मैं अप्रसन्न हुआ कि यह तो महा अपवित्र स्थान है, या रक्त मज्जा से युक्त महानरक के तुल्य अंधकार है। फिर और आगे गया तो वह एक कमल देखा जिसमें उसका संवेदन फुरता था और संवित शक्ति जो महातेज युक्त हृदय आकाश है वह भी वहां स्थित था। वही त्रिलोकी का आदर्श है। त्रिलोकी में जो पदार्थ है उनका दीपक है और सब पदार्थों की सत्ता है। ऐसे सम्मित रूपी जीव सत्ता वहां स्थित थी, उसमें तद्रूपता को प्राप्त हुआ। फिर मैंने सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पर्वत, समुद्र, देवता, गंधर्वादिक नाना प्रकार के स्थावर जंगम विश्व को देखा। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सहित संपूर्ण सृष्टि को उसके भीतर देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि उसके भीतर सृष्टि क्यों गर्भाषित है। हे बधिक, उसने जागृत में उस सृष्टि का अनुभव इंद्रियों से किया था और भीतर चित्तत्व में उसका संस्कार हुआ था। वही भीतर भासने लगा। भीतर जो भूत सत्ता थी वह उसके स्वप्न में बाहर सृष्टि रूप बनी और मुझको प्रत्यक्ष भासित होने लगी। जैसे जागृत प्रत्यक्ष अर्थाकार भासता है, वैसे ही मुझको यह सृष्टि भासित होने लगी। हे बधिक, इस जागृत सृष्टि और उस सृष्टि में मैंने कुछ भेद न देखा। दोनों तुल्य है। चिर पर्यंत प्रतीत का नाम जागृत है और अल्पकाल की प्रतीत का नाम स्वप्न है, पर स्वरूप से दोनों तुल्य है। जो उसके स्वप्न के अनुभव में था वह मुझको जागृत दिखा और जो मुझको जागृत दिखा वह उसको स्वप्न दिखा। निद्रा दोष से उसको स्वप्न हुआ सो उसको भी उस काल में जागृत रूप भासित होने लगा, क्योंकि स्वप्न जो स्वप्न रूप है सो जागृत में स्वप्न है और स्वप्न में तो जागृत है। वैसे जागृत भी अपने काल में जागृत है, नहीं तो स्वप्न रूप है। इसलिए जागृत में भी जो सत्य की प्रतीत है वही प्रमाद है। इन दोनों में कुछ भेद नहीं, क्योंकि जागृत और स्वप्न दोनों का अधिष्ठान चैतन्य सत्ता पर ब्रह्म ही है और उसी के प्रमाद से प्राण के साथ संबंध हुआ है। जब प्राण से चित्त संवेदन मिलता है तब उस स्फुरण के जीव, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार आदि नाम होते हैं। वही संवेदन जो बाह्य रूप को फुरता है वह जागृत रूप जगत होकर भासित होता है। और पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिया और अंतःकरण चतुष्टयः, ये 14 अपने अपने विषयों को ग्रहण करते हैं, इसका नाम जागृत है। जब चित्त स्पंद निद्रा दोष से अंतर्मुख फुरता है तब नाना प्रकार के स्वप्न की सृष्टि देखता है और उस काल में वही जागृत रूप भासित होता है। अधिष्ठान आत्मसत्ता जब संवेदन उसकी ओर फुरती है और बाह्य विषय के स्फुरण से रहित होती है तब न जागृत भासित होता है और न स्वप्न भासित होता है, केवल निर्विकल्प आत्मसत्ता शेष रहती है। हे बधिक, मैंने विचार कर देखा है कि जगत और कुछ वस्तु नहीं, फुरने ही का नाम जगत है। जब चित्त संवेदन स्फुरण रूप होता है तब जगत भासता है और जब चित्त संवेदन फुरने से रहित होता है तब जगत की कल्पना मिट जाती है। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि वास्तव में केवल चिन्मात्र है, जगत कुछ वस्तु नहीं, मिथ्या कल्पना मात्र है। हे बधिक, जगत भावना त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। अब वही वृत्तांत फिर सुनो। जब उसके भीतर मैंने स्वप्न और जागृत अवस्था देखी तब मैंने यह इच्छा की कि सुषुप्ति अवस्था भी देखो और विचार किया कि सुषुप्ति प्रलय का नाम है, जहां दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों का अभाव हो जाता है, परंतु जहां मैं देखने वाला हुआ वहां महाप्रलय कैसे होगा, और जो मैं जानने वाला न हूं तब सुषुप्ति को कौन जानेगा। हे बधिक, तब मैंने विचार कर देखा कि सुषुप्ति और कुछ नहीं, जहां चित्त की वृत्ति नहीं फुरती उसी का नाम सुषुप्ति है। ऐसे विचार कर मैंने चित्त को फुरने से रहित किया तब उसकी सुषुप्ति देखा तो क्या देखा कि न कोई वहां अहम और त्वम शब्द है, न शुभ है न अशुभ है, न जागृत है न स्वप्न है और न सुषुप्ति की कल्पना ही है। सब कल्पना से रहित केवल चित्त सत्ता मैंने देखी। जो तुम कहो कि तुमने सुषुप्ति निर्विकल्प कैसी देखी, तो उसका उत्तर यह है कि अनुभव ज्ञान रूप आत्मसत्ता सर्वदा ज्यों की त्यों है, उसमें जैसा आभास फुरता है वैसा ही ज्ञान होता है। यह जो तुम भी दिन प्रतिदिन देखते हो और सुषुप्ति से उठकर जानते हो कि मैं सुख से सोया था, सो अनुभव से ही देखते हो, वैसे ही मैंने भी वह देखा जहां चित्त संकल्प कोई नहीं फुरता, केवल निर्विकल्प है परंतु सम्यक बोध से रहित है। उसी अभाव वृत्ति का नाम सुषुप्ति है। फिर मुझको तुरियावस्था देखने की इच्छा हुई, पर तुरियावस्था देखना महाकठिन है। तुरियावस्था साक्षीभूत वृत्ति का नाम है, वह सम्यक ज्ञान से उत्पन्न होती है। वह जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था की साक्षी और सुषुप्ति किनाई है। जैसे सुषुप्ति में अहम त्वम आदि कोई कल्पना नहीं होती, वैसे ही तुरियावस्था में भी नहीं, उसमें ब्रह्म का सम्यक बोध होता है, पर सुषुप्ति जड़ीभूत तमरूप अविद्या होती है। तुरियावस्था में जड़ता नहीं होती, सुषुप्ति और तुरियावस्था में इतना ही भेद है। सच्चिदानंद साक्षी वृत्ति होती है, सम्यक बोध का नाम तुर्य पद है, तुर्य इससे भिन्न नहीं। ऐसे निश्चय से मैंने इसको देखा। हे बधिक, चारों अवस्था मैंने माया अर्थात स्फुरण सहित भिन्न भिन्न देखी, पर आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है, उसमें न कोई जागृत है न स्वप्न है न सुषुप्ति है और न तुरियावस्था ही है, इनका भेद वह नहीं है। आत्मसत्ता सदा अद्वैत है और ये चारों अवस्थाएं चित्त संवेदन में होती है। हे बधिक, ऐसा अनुभव करके मैं बाहर आया, बाहर भी मुझको वैसे ही देखने लगा। तब मैंने कहा कि यह जगत मुझको उसके भीतर दिखा था, वह बाहर कैसे आया। तब मैंने फिर उसके भीतर प्रवेश किया। प्रथम जब उसके भीतर मैंने प्रवेश किया था और उसके भीतर सृष्टि देखी थी, तब उसका और मेरा संवेदन मिल गया था, पर जब मैंने अपना संवेदन उससे भिन्न किया तब दो ब्रह्मांड हो गए, एक उसका संवेदन फुरने में और एक मेरे संवेदन में भासित होने लगा, क्योंकि मैंने प्रथम उसकी सृष्टि को देख और अर्थरूप जानकर ग्रहण किया था, उसका संस्कार दृढ़ हो गया। आत्मसत्ता के आश्रय से जैसे संवेदन फुरता गया वैसे ही होकर भासित होने लगा। उसका स्वप्न मुझको जागृत होकर भासित होने लगा। जैसे एक दर्पण में दो प्रतिबिंब दिखे वैसे ही एक अनुभव में मुझे दो सृष्टि दिखने लगी। तब मैंने विचार किया कि सृष्टि संकल्प रूप है, संकल्प प्रत्येक जीव का अपना अपना है और अपने अपने संकल्प की भिन्न भिन्न सृष्टि है। इसे अनुभव के आश्रय से जैसा जैसा संकल्प फुरता है वैसे वैसे सृष्टि दिखती है। सृष्टि का कारण और कोई नहीं। हे बधिक, 8 निमेष तक मुझको दो सृष्टि दिखती रही। फिर मैंने उसके और अपने दोनों की चित्तवृत्ति इकट्ठी करके मिलाई तो दोनों तद्रूप हो गई। जैसे जल और दूध मिलाकर एक रूप हो जाते हैं तब सृष्टि का अभाव हो गया। जैसे दृष्टि भ्रम में आकाश में दो चंद्रमा दिखे और भ्रम के न रहने पर दूसरा चंद्रमा का अभाव हो जाता है वैसे ही द्वितीय वृत्ति के अभाव में मेरे सृष्टि का अभाव हो गया। निदान एक ही सृष्टि दिखने लगी। नाना प्रकार के व्यवहार होते दिखे और चंद्रमा सूर्य पृथ्वी द्वीप समुद्र स्पष्ट भासित होने लगे। कुछ काल के उपरांत चित्त की वृत्ति सुषुप्ति किनाई और आई और स्वप्न की सृष्टि का विस्तार लीन होने लगा। जैसे संध्या के समय सूर्य की किरणें सूर्य में लय हो जाती है, जब वह सृष्टि चित्त में लय होने लगी तब स्वप्न की सृष्टि मिट गई, सुषुप्ति अवस्था हुई और सब इंद्रियां स्थिर हो गई। हे बधिक, सुषुप्ति तब होती है जब जीव अन्न भोजन करता है और वह संवाही नाड़ी पर आकर स्थित होता है। तब जागृत वाली नाड़ी ठहर जाती है, उससे प्राण भी ठहर जाते हैं, तब मन भी ठहर जाता है, उसका नाम सुषुप्ति है। जब मन फिर फुरता है तब जागृत अवस्था होती है। इतना सुनकर राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, जब मन प्राणों ही से चलता है तब मन का अपना रूप तो नहीं हुआ? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, परमार्थ से कहिए तो देह ही नहीं है तो मन क्या हो? जैसे स्वप्न में पहाड़ दिखते हैं वैसे यह शरीर दिखता है, क्योंकि सबका अधिकारण कोई नहीं। इससे जगत मिथ्या भ्रम है। केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। जो तत्ववेत्ता है उनको तो ऐसे ही भासित होता है। अज्ञानी के निश्चय को हम नहीं जानते। जैसे सूर्य उल्लू के अनुभव को नहीं जानता और उल्लू सूर्य के निश्चय को नहीं जानता, वैसे ज्ञानी और अज्ञानी का निश्चय भिन्न भिन्न होता है। शुद्ध चिन्मात्र आकाश में जगत भ्रम कुछ नहीं है, पर स्फुरण भाव से जीव अपने चेतन वपु को भूल ज्ञान बिना ही मन भाव को प्राप्त होता है और तब मन आत्मसत्ता के आश्रित होकर प्राण वायु को अपना आश्रय कल्पना करता है कि यह मेरा प्राण है। हे रामचंद्र जी, फिर जैसे जैसे मन कल्पना करता है वैसे वैसे देह इंद्रियां और जगत दिखते हैं। पर ब्रह्म सर्वशक्ति संपन्न है, उसमें जैसी जैसी भावना से मन फुरता है वैसा ही वैसा रूप भासित होता है, वास्तव में और कुछ नहीं, केवल ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। मन का फुरना जैसे जैसे दृढ़ हुआ है, वैसे ही वैसे देह इंद्रिया और जगत भासित होने लगा है। जैसे स्वप्न में कल्पना मात्र जगत दिखता है, वैसे ही इसे जानो। हे राम, जितने विकल्प उठते हैं वे सब मन के रचे हुए हैं। जब मन उदय होता है तब यह स्फुरण होता है कि यह पदार्थ सत्य है और यह सत्य है। जब चित्त शक्ति का मन से संबंध होता है तब प्रथम प्राण उदय होते हैं और प्राण का ग्रहण करके मन कहता है कि मैं जीव हूं, प्राण ही मेरी गति है, प्राण के बिना मैं कहां था। फिर कहता है कि जब प्राण का वियोग होगा तब मैं मर जाऊंगा, फिर न रहूंगा। फिर ऐसे कहता है कि मरकर भी मैं जीऊंगा। हे रामचंद्र जी, संशय वाले को न इस लोक में सुख है और न परलोक में। जब तक आत्मबोध का साक्षात्कार नहीं होता तब तक चित्त भी निर्वाण नहीं होता और विकल्प भी नहीं मिटते। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।